من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ورب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. आप लोगों के होमवर्क मुझे रिसीव हुए, जिन जिन ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे थे मैंने उन्हें चेक किया। बहुत अच्छे फहम के हवाले से मुझे खुद देख के अच्छा महसूस हुआ कि अच्छा फहम जा रहा है। तो उसी हवाले से पहले हम जो जमा मुख्तसर कर रहे थे उसको हम करने से पहले मैं थोड़ा सा रूट वर्ड्स का आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ। मैंने एक व्हाट्सएप के ऊपर पिक्चर भी सेंड की है, वो असल में आपका उसी पिक्चर से रिलेटेड आपने होमवर्क करना है। ओके, तो रूट वर्ड से रिलेटेड ये होमवर्क होगा आपका। जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ जमा मुकसर के उजान पढ़े थे, तो उन्हीं की एक एप्लीकेशन है जो उस होमवर्क में आपको करनी होगी। तो जैसे कुछ अल्फाज के मैंने आपको बताया था कि उजान होते हैं, और फिर किसी भी अगर रूट वर्ड का हमें पता चले तो हम उसको वजन के ऊपर किस तरह से यानी अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे रूट वर्ड फतहा है, इसी से आपको डिफरेंट शेप्स मिल सकती हैं। यफ्तहू, इफ्ताह, इफ्तताहा, इफ्तिताह। जब हम सेरेमनी का तो हम उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अफ्ताहा, इफ्तिताह, ये सारे जो हैं इन सब वर्ड्स का रूट वर्ड हमारे पास फतहा है। तो जैसे आपको आप देखिए प्लेडो से बच्चे डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, कभी सर्कल बना लेते हैं, कभी ट्राइंगल बना लेते हैं, कभी रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो एक ही कलर की प्लेटों से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक ही रूट वर्ड से आप डिफरेंट उसकी शेप्स बना लेते हैं। तो यही चीज हमारे पास बेसिकली उजान में भी होती है कि आपने जो रूट वर्ड्स होते हैं उनको फा, ऐन और लाम के बीच में रिप्लेस कर देना होता है। फिर उसके अलावा जो भी आपके पास, जैसे हमने कुछ उजान पढ़े थे अफाल, स्टार्ट पे हमजा और थर्ड नंबर पे अलिफ, ये तो मस्त रहेगा क्योंकि अफाल इनके सारे औजान में आपको ये दो लेटर्स जो हैं ये हमेशा मिलेंगे। इसी तरह फियाल हमने एक वजन पढ़ा था, इसमें भी आपके पास जो थर्ड वन अलिफ है ये तमाम औजान में आपको इसी तरीके से मिलेगा। तो आपको मैंने शुरू में उस पिक्चर के अंदर ही मैंने शुरू में कुछ औजान और औजान के नीचे मैंने कुछ अल्फाज लिखे जिनके ऊपर आपको उन औजान को फिट करना है। और नीचे मैंने आमाल और अज़कार, ये दो आपको डेमो सकेंगे कि इस तरीके से आप उस चीज को फॉलो करें ताकि आपको वजन किसी भी चीज का किस तरीके से बनाया जाता है इस सारी चीज को अच्छे तरीके से समझ आए। क्योंकि ये अभी तो एक सिंपल इनिशियल पॉइंट पे आपको एक वजन उजान का पता नहीं जमा कर सकते, लेकिन आगे इंशाल्लाह ये चीज हमारे साथ ग्रामर में चलती रहेगी। तो ये पॉइंट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे हम लोग अदब के हवाले से पढ़े थे इसम की जो कुछ अकसाम हमने पढ़ी थी, हमने मुसन्ना मुसन्ना हालत रफ और हालत नसब जो हमने पढ़ा, फिर जमा जमा की हमने दो बेसिक जो इसकी टाइप्स हैं जमा सालिम और जमा मुकसर उस चीज को डिस्कस किया लास्ट क्लास में। तो जमा मुकसर के हमने कुछ औजान पढ़े थे जो मुनसरिफ है, फिर हमने दो औजान पढ़े थे जो गैर मुनसरिफ है, अफ़ईलाउ और फुआलाउ। ये दो औजान हमने से पढ़े थे। तो अब हम एक वजन आखिरी इसका देखेंगे जो कि मबनी है, और मबनी क्या होता है कि जिसमें आपके पास हालत रफ, हालत नसब और हालत जर, इन तीनों कंडीशन में वो वर्ड सेम ही रहता है। जैसे मूसा है वो हालत रफ में है, खाने से लसक में और खाने से जल में, तीनों में उसकी
तो जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ औजार डिस्कस किए थे जो मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ के थे, तो अब हम एक वजन इसका सिर्फ देखेंगे जो कि मबनी है, और वो वजन उस वजन पे आने वाले कुछ वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे मरदा मरीज है, जिसको कि हम कहते हैं कि कोई भी शख्स जब बीमार हो जाता है तो उसको हम अरबी में मरीज बोलते हैं। तो इसकी जो हमारे पास जमा इस्तेमाल होती है मरीज की, वो हमारी मरुदा यूज होती है जो कि फाला के वजन पे है। मैं आपको राइट करके दे देती हूँ, सिर्फ मैं वजन राइट करूंगी क्योंकि बाकी जो लेटर्स है वो फिर आप उसको उसी के ऊपर देख सकते हैं। इसमें ये फाला जो है ये मबनी वजन है जमा मुकस्सर का। अब इसमें जो मैंने आपको पहली मिसाल दी वो मरीज से मरदा, मरीज सिंगुलर है और इसकी जो जमा अरबी में इस्तेमाल होती है वो मरदा इस्तेमाल होती है फाला के वजन पे। इसी तरह से कतील, कतील से कतला, कोई भी शख्स जो जिसको कत्ल किया गया हो उसको कतील कहते हैं सिंगुलर को, और कतला इसकी प्लूरल इस्तेमाल होती है फाला के वजन पे। इसी तरह मैयतुन जो डेड बॉडी है उसको कहा जाता है, और मौता, मौता इसकी जमा इस्तेमाल होती है फाला। इसी तरह सरी अक्सर सर्रा ये भी एक जबर इस्तेमाल होती है सरी की जगह ताला के बदल में।
अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? इसमें अब हम नेक्स्ट जो हमारा इसम के अतबार से हम फोर्थ प्रबंध लिखना चाह रहे हैं, वुसत के अतबार से इसम को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो इसमें हमारे पास इसम को वुसत के अतबार से बुनियादी तौर पर हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, इसम मारिफा और इसम मजरा। ये इसकी दो अकसाम है। और इसमें इसम नकरा जो है, कोई भी इसम जब हम उसको मारिफत डिफाइन कैटेगरी में चला जाता है। इसमें भी हमने जैसे मुज़क्कर और मुअन्नस में देखा था कि हम किसी भी वर्ड को पहले सबसे पहले देखते हैं कि वो मुअन्नस है तो हम अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो वो इसम मुअन्नस हो जाता है, अदरवाइज वो फिर मुज़क्कर की कैटेगरी में चला जाता है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी जो नकेरा और मारिफा की डेफिनेशन है उसमें भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जिस इसम को हम मारिफा डिफाइन नहीं कर सकते उसको फिर हम नकेरा की कैटेगरी में ले जाते हैं। और नॉर्मली आपको एक साइन जो है वो इसम नकेरा का मिलेगा और वो तमीन है कि जब किसी वर्ड के ऊपर तमीन आपको आखिर में मिलेगी तो वो इसम जो है वो इसम नकेरा के अंदर चला जाएगा। और मारिफा की इसी तरीके से फिर हम इसम मारिफा को देख लेते हैं कि इसम मारिफा को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। और इसम मारिफा की आगे से हमें कुछ टाइप्स मिलती है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं इसम मारिफा के, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ये इसम मारिफा की हमारे पास सात सूरतें होती हैं, ये सात अकसाम आप कह सकते हैं कि ये सात कैटेगरीज हैं। इनमें से अगर कोई भी इसम इन सात कैटेगरीज के अंदर आ जाएगा तो वो इसम मारिफा हो जाएगा। तो वैसे भी जैसे हम उर्दू में पढ़ते आए हैं बचपन से कि जब कोई भी चीज स्पेसिफिक होती है, डिफाइंड नाउन होता है, तो वो इसम मारिफा के अंदर हो जाता है। आपको तो नाम के आखिर में, लेकिन ये इसम मारिफा है क्योंकि ये इसम आलम के अंदर आ रहा है। और इसी तरीके से मक्का टू है, मक्का टू के आपको ना तो अलिफ नाम मिल रहा है और ना ही कोई तो हम इसको ये चीज देख रहे हैं कि मक्का जो है वो एक मुल्क का नाम है, जिसकी वजह से ये इसम मारिफा की कैटेगरी में चला जाएगा, इसम आलम के अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास इसम मारिफा का सबसे पहला पॉइंट हो गया। इसमें इसम बमीर है, इसम बमीर जैसे हम उर्दू में भी कोई भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले किसी भी शख्स का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम जब उस नाम को बार बार रिपीट करने से हम कमाई को यूज करते हैं कि हामिद आया, वो उसने खाना खाया। अब ये जो उसका वर्ड है ये हम उर्दू में बमीर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम जो अरबी है इसमें भी हमारे पास कमाई होते हैं जो कि इसम मारिफा की कैटेगरी में जाते हैं, यानी डिफाइंड नाउन के अंदर हम उनको लेकर जाते हैं जो भी हमारे पास बमाए हैं। तो इसको इस टॉपिक को हम ज्यादा डिटेल के साथ बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ी सी आयात से कुछ बमाए दिखाती हूँ। इसमें भी हमारे पास सिंगुलर भी होते हैं, फिर मुसन्ना में भी होते हैं और जमा में भी बमाए होते हैं। फिर जो मुजक्कर और मोनस हैं उनकी कैटेगरीज भी इन कवायद के अंदर बनी हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह हम लेटर ऑन उनको सारों को डिफाइन करेंगे कि वो किस तरीके से है. लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ सूरह बकरा ही से आयात से मैं आपको बताती हूँ कि कवायद असल में क्या होते हैं. जैसे आप इसमें अगर 235 आया देखिए सूरह बकरा, तो वला गुनाह अलैकुम, अलैकुम कुम जो है ये यहाँ पर ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. इसके बाद फीमा अर्रतुम, तुम भी ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. फिर बिही, बिही में भी जो ही है ये भी ज़मीर है. मिन खुतबति निसाई अव अखनंतुम, तुम अगेन आया, ये भी इस्म ज़मीर है. फी अनफुसिकुम, कुम भी ज़मीर है. अलिम अल्लाहु अन्नकुम, अन्नकुम कुम यहाँ पर भी ज़मीर है. फिर सतर कुरूना गुन्ना, अब ये जो सतर कुरूना एक वर्ड है और गुन्ना जो इसके साथ में आती है ये भी ज़मीर है. तो इसी तरह से हमारे पास जो अरबी है इसमें बहुत सारे ज़मायर इस्तेमाल होते हैं. फिर अगर हम सूरतुल फातिहा में देखें तो यहाँ पर भी हमें कुछ ज़मायर मिलते हैं. इसमें जैसे आप आया नंबर 5 में देखें, या खा, खा हमारे पास ज़मीर है. नाबुदु व या खा, यहाँ पर जो खा है ये भी ज़मीर हमारे पास आ रही है. तो इस तरह से हमारे पास ज़मायर जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन इनको हम डिटेल से इंशाल्लाह बाद में देखेंगे. लेकिन आपको एक मतलब एक आइडिया हो जाना चाहिए कि ज़मीर जो है वो हमारे पास अरबी में किस तरह से इस्तेमाल होती है. फिर इसी तरीके से ये हमारे पास 2 हो गए. इस्म अलम हमने सबसे पहले देखा, फिर हमने इस्म ज़मीर देखा जो कि मारिफा की आगे से कैटेगरीज आ रही है. फिर हमारे पास जो 3rd वन है वो है इस्म इशारा. इशारा जैसे हम इसका हमें नाम से पता चल रहा है, जब हम किसी भी चीज को वो किताब, ये गाड़ी, या इस तरह से जब हम दिस दैट का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब हमारे जो दिस दैट या ये वो, ये सब इशारा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. और इसी तरीके से हमारे पास अरबी में भी कुछ अस्मा है जो इशारा के तौर पर हमें इस्तेमाल होते हैं. इसमें जालिका, तिलका, और हाजा, हाजी, ये सब इसमें इशारा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. कुरान मजीद में इसकी आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी इसमें इशारा की. तो इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में जो 5th पॉइंट आ रहा है, इस्म आलम, इस्म ज़मीर, इस्म इशारा, इस्म मौसूल, और फिर 5th नंबर पे हमारे पास मुअर्रफ बिल नाम है. और मुअर्रफ बिल नाम में ऐसा है कि जब भी आपको अलिफ लाम किसी भी इस्म के स्टार्ट में मिलेगा तो आप उसको मुअर्रफ बिल नाम की कैटेगरी में ले जाएंगे. इसमें हम किसी भी नकरा या तनवीन वाले वर्ड को हम अलिफ लाम उसके स्टार्ट में ला के ऐड करके तो हम उसको मुअर्रब बिलाम बना सकते हैं। जैसे हमने कुछ अस्मा जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए उसमें हम देखेंगे कलमुन हमारे पास एक वर्ड है जिसके स्टार्ट में अगर हम अलिफ लाम ऐड कर देंगे तो उससे उसमें क्या चेंजिंग आएगी कि जो हमारी तनवीन है वो खत्म हो जाएगी और हम सिर्फ एक दम्मा उसके ऊपर यूज करेंगे। यानी तनवीन और अलिफ लाम ये किसी भी इसम के ऊपर इकट्ठे दाखिल नहीं होते। अगर आपके पास अलिफ लाम है तो इसका मतलब है कि आपको एंड वाले लेटर से तनवीन हटानी पड़ेगी। इसमें जैसे कलमुन से हम अगर कलमुन में अलिफ लाम ऐड करें तो अल कलमुन बन जाएगा। इसी तरह बैतुन के स्टार्ट में अगर हम अलिफ लाम ऐड करें तो अल बैतु हो जाएगा। किताबुन में अगर हम अलिफ लाम ऐड करें तो अल किताबु हो जाएगा। और जन्नतुन के स्टार्ट में हम अलिफ लाम ऐड करें तो अल जन्नतु हो जाएगा। तो यानी इसम चाहे मुजक्कर है या मुअन्नस है अगर वो तनवीन के साथ है और हम उसके स्टार्ट में अलिफ लाम ऐड कर रहे हैं तो वो फिर एक हरकत उसकी हो जाएगी, दम्मा होगी, कसरा होगी या फतहा होगी, एक हरकत हो जाएगी। यानी इसमें हमारे पास जिन्स के अतबार से कोई चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ तनवीन हमें हटानी होती है। ये तो हमने देख लिया कि अगर इसम वाहिद है। अगर इसम मुसन्ना है जैसे कलम उन्हीं को अगर हम ले लें और इसको अगर हम मुसन्ना में चेंज करें कलमानी या कलमैनी तो इसमें फिर हमें अलिफ लाम ऐड करने से कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। कलमानी से अल कलमानी और कलमैनी से अल कलमैनी। इसी तरह अगर हम किताबुन से किताबानी मुसन्ना बनाए तो अल किताबानी। यानी उसमें हमारे पास मुसन्ना में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मुसन्ना में चेंजिंग हमारे पास वाहिद इसम में होती है कि वाहिद इसम अगर तो तनवीन के साथ है तो हम फिर उसकी तनवीन खत्म करके एक हराका कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास मुसन्ना होता है मुसन्ना में हमें सिर्फ अलिफ लाम ऐड करना होता है, बाकी हरकात में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है। और ये अगर हम जमा को देखें तो जमा में भी फिर हमारे पास यही पॉइंट है कि अगर तो जमा के एंड पे तनवीन, क्योंकि हमने कुछ ऐसे जमा मुकसर के औजान पढ़े हैं जो कि मुनसरिफ होते हैं तो मुनसरिफ तनवीन के साथ हमेशा होता है, तो अगर कोई मुनसरिफ जमा मुकसर का हमारे पास वर्ड आ रहा है तो उसमें भी हम अलिफ लाम जब ऐड करेंगे स्टार्ट में तो हमने उसकी एक हरकत कर देनी है। जैसे कि अखलामुन ये हमारे पास मुनसरिफ वजन है तो इसको जब हम अलिफ लाम के साथ करेंगे तो अल अखलामु। और इसी तरीके से अबवाबुन है ये मुनसरिफ वजन है हमारे पास तो इसके स्टार्ट में जब हम अलिफ लाम ऐड करेंगे तो अल अबवाबु हो जाएगा। ये तनवीन के बगैर होगा फिर। फिर अगर हम जमा मुअन्नस को देखें जैसे कि हमने अलिफ ता इसकी एक अलामत देखी थी कि अलिफ ता जो है वो जमा मुअन्नस की अलामत है तो अगर उसमें हम अलिफ लाम को ऐड करेंगे जैसे जन्नतुन से जन्नातुन है हमारे पास एक वर्ड जो कि मुअन्नस की जमा है तो इसके जब हम स्टार्ट में अलिफ लाम को ऐड करेंगे तो इसमें अल जन्नातु और नसब और जर में अल जन्नाति। जैसे हमने वहां पर भी देखा था कि जो अलिफ ता है वो तथा तनवीन के साथ नहीं होता बल्कि वो नसब की कंडीशन जब होगी हालत नसब होगी हम उसे जन्नातिन भी लिखेंगे और हालत जर में भी जन्नातिन ही होगा। अलिफ ता तथा तनवीन के साथ नहीं आता। इसी तरीके से जब हम इसको अलिफ लाम मुअर्रब लाम के साथ हम लिखेंगे तो हम अल जन्नाती हालत नसब में लिखेंगे और अल जन्नाती हालत जर में लिखेंगे। ठीक है। और जैसे जमा मुकसर को हमने देखा तो अगर हम जमा सालिम को देखें तो जमा सालिम में भी कोई हमारे पास आपकी चेंजिंग नहीं होगी। जैसे मुस्लिमून तो इसी तरह काफिरूना अलकाफिर होना हो जाएगा, मुनाफिक होना अल मुनाफिक होना हो जाएगा। अब जो हमने ओजान को देखा है तो देखें तो अकबरू हालत रफ में अकबरा حالت نصب میں اور حالت جر میں بھی اکبر فتحہ کے ساتھ، لیکن اگر ہم اس کو مورب بالعام کر کے دیکھیں گے تو حالت رفع میں یہ اکبر ہو جائے گا، حالت نصب میں یہ اکبرا ہو جائے گا، اور حالت جر میں یہ ام سوری الف لام کے ساتھ ہم نے کرنا ہے تو الاکبر ہو جائے گا، پھر حالت نصب میں یہ الاکبرا ہو جائے گا، اور حالت جر میں یہ الاکبری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم الف لام کے بغیر کر رہے ہیں تو حالت جر میں یہ اکبرا ہوگا، اور اگر ہم مورب لام کے ساتھ کر رہے ہیں تو الاکبری. ٹھیک ہے، اور تباہوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ حالت جر میں ہمارے پاس الفقراء، مورب لام اگر ہوگا تو الفقراء ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے دیکھ لیا مورب لام کو کس طریقے کے ساتھ ہمارے پاس ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ مورب لام کے اندر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ جو ہم نے حروف تہجی پورے پڑھے تھے فرسٹ کلاس میں دیکھے تھے، تو ان میں کچھ ایسے حروف ہیں جن کو ہم حروف قمری کہتے ہیں، اور کچھ ایسے حروف ہیں جن کو ہم حروف شمسی کہتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جیسے کچھ حروف ہیں جو حروف قمری کے اندر آتے ہیں، کچھ حروف ہیں جو حروف شمسی کے اندر آتے ہیں، جو حروف تہجی پڑھے ہیں. تو اس کو اگر ہم قرآن مجید کھول کے تھوڑا سا پریکٹس کریں تو پھر ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ اصل میں یہ حروف قمری اور حروف شمسی سے کیا چیز مراد ہے. تو اس میں ہم اوپن کرتے ہیں قرآن مجید. ٹھیک ہے، آپ پارا اوپن کریں، سورت الانعام، الانعام کی ہم آیات سٹارٹ کرتے ہیں، اور ان میں میں آپ کو مثالوں سے سمجھاؤں گی کہ القمری اور الشمسی حروف کون سے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ آیہ نمبر 3 دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نزل علیک الکتاب، الکتاب الکتاب ہمارے پاس مورب لام ہے. جی آل عمران، اور اس وجہ کے لیے بات تو شمسی لیٹر کی ایک ایگزامپل آ رہی ہے اسی آیا میں، مصدق لما بین یدیہ وانزل التوراۃ. اب آپ دیکھیں التوراۃ میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو مورب باللام والا لام ہے اس کو نہیں پروناؤنس کر رہے بلکہ ہم الف کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ جوائن کر رہے التوراۃ. ٹھیک ہے، تو اصل میں ان کو ہم قمری اور شمسی نام کیوں دیتے ہیں کہ القمر میں ہم لام کو پروناؤنس کر رہے ہیں، لیکن الشمس میں ہم الف کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. یہ جو بیچ میں الف لکھا ہوا ہے اس کو ہم پروناؤنس نہیں کر رہے. مورب لام ہے یہ، الشمس میں جو الف لام سٹارٹ میں لکھا ہوا ہے یہ مورب لام ورڈ ہے، لیکن
चूंकि हम इसे प्रोनाउंस नहीं कर रहे तो इस तरह के जो भी लेटर्स हैं जो हम आम तौर पर प्रोनाउंस करते हैं बता रहे लेटर के ऊपर चले जाते हैं जैसे अशम्स है या अच्छा है तो इस तरह के जो भी लेटर्स आएंगे वो फिर शमसी के अंदर आ जाएंगे और इसी में अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो फिर स्टूडेंट कोई एग्जाम्पल आप देते हैं जैसे आया नंबर फोर में जो हमारे पास एग्जाम्पल आ रहा है अलग तोपा वाला तो यहाँ पर अलग तोपा वाला ये जो कार है ये भी हमारे पास कमरी लेटर्स में जा रहा है क्योंकि हम इसका लाम प्रोनाउंस कर रहे हैं फिर इसी तरीके से आया नंबर फाइव में इन अल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दी में जो हमजा है वो हुरूफ कमरी में है इसलिए क्योंकि हम उससे पहले वाला जो लाम है उसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं और वला फिस समाई में जो सीन आ रहा है वो हुरूफ शमसी में आ रहा है क्योंकि हम लाम को प्रोनाउंस नहीं कर रहे बल्कि डायरेक्ट सीन पे डाल रहे हैं जी हाँ जी सीन जो है वो शमसी पॉइंट आपको कमरी और शमसी हुरूफ का क्लियर हो गया ठीक है हाँ जी अगर हम में जो हमजा है वो कमरी लेटर से आ रहा है राइट अब शीन शमसी लेटर होगा इसमें असल में आपके पास एक लेटर अब जैसे फिल अखाम की एग्जांपल स्टूडेंट ने दी तो हमजा हमेशा आपको कमरी लेटर मिलेगा यानी आपको अल अरहाम है या कोई भी और इस्म है जैसे अल आयात है हमजा से स्टार्ट हो रहा है तो इसी तरीके से अल अलबाब है ये भी हमजा से स्टार्ट हो रहा है तो हमजा अगर कमरी है तो उससे स्टार्ट होने वाले तमाम जो अस्मा है उनको जब आप मुअर्रब पे लाम करेंगे तो हम लाम को आप प्रोनाउंस करेंगे तो एक लेटर जब आपने उसको कमरी लेटर कमरी की लिस्ट में डाल दिए तो वो हमेशा कमरी रहेगा तो इसलिए शीन भी शमसी है तो वो हमेशा शमसी है चाहे वो शम्स में आ रहा है या वो किसी और लेटर के स्टार्ट में आ रहा है वो हमेशा शमसी ही होगा जैसे सफरुन है इसमें इसको अगर हम मुअर्रब पे लाम करें तो अस सफरुन ये शमसी लेटर है सीन फिर शहादतु को अगर हम मुअर्रब पे लाम करें तो अशहादतु हो जाएगा इसमें भी हम लाम को प्रोनाउंस नहीं कर रहे बल्कि हम शीन के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं शमसी लेटर है बिल्कुल ठीक है अब इसी हवाले से आप लोगों को ये बात अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होगी तो इसमें आपके पास एक होमवर्क है और हर स्टूडेंट ने एक कैटेगरी चूज करनी है जैसे मैं यहाँ पर कुछ कैटेगरीज लिख रही हूँ अलिफ से लेके तक अलिफ बा ता सा हा खा ये अलिफ से खा का मतलब है कि अलिफ और खा के बीच में जितने लेटर्स आ रहे हैं एक स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट आप में से ये ले ले और जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं जैसे अरहाम है उसको आपने मुर्रब पे लाम किया तो वो कमरी है या शमसी है इसी तरह बा में बुखल है अल बुखल हो गया ये भी बाबी कमरी है तो उसको फिर आपने कोई भी एग्जांपल कुरान मजीद से ढूंढ के वो वर्ड लिख के फिर आपने नीचे लिखना है कि ये
मुहर्रम के नाम कमरी में से है या शमसी में से है, इसी तरह ता की किसी भी लेटर की एग्जाम्पल आपने कुरान मजीद में से ढूंढ के फिर आपने लिखना है कि ता जो है वो शमसी है या कमरी लेटर है। जैसे हमने अभी अथवाब आई थिंक एग्जाम्पल सूरह आल इमरान में से देखी थी, तो इस तरह से आपने कोई भी लफ्ज देखना है और उसके बाद उसको आगे से बताना है कि एक एक एग्जाम्पल एक एक लेटर की अलिफ की फिर बा की फिर ता की। इसी तरह अलिफ से लेके ख तक को स्टूडेंट ढूंढ ले, फिर दाल से साथ तक सेकेंड कैटेगरी आपके पास दाल से सौ तक होगी, फिर दौत से काफ तक। इनके बीच में जितने लेटर्स आएंगे उन सब से आपने एक एक एग्जाम्पल कुरान मजीद से ढूंढनी है। ये आप लोग खुद बताएंगे कि कमरी है या शमसी है। अब देखें अलिफ जो है वो कमरी लेटर है, बा भी कमरी है, लेकिन ता जो है वो शमसी है। तो आपने इसी तरीके से मुहर्रम बिल लाम के साथ इन लेटर्स इन लेटर्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की एग्जाम्पल कुरान मजीद में से ढूंढ के फिर उनको नीचे बताना है कि ये कमरी है या ये शमसी है। ठीक, इसके बाद दौत से काफ तक एक कैटेगरी होगी और एक काफ से लेके या तक। ठीक है, ये आपके पास चार कैटेगरीज हैं। जो भी कैटेगरी आप चूज करना चाहते हैं इन चारों में से एक एक कैटेगरी हर स्टूडेंट चूज कर ले। रिपीट भी हो सकती है, कोर्स ये चार ही है तो रिपीट होंगे। तो ये आपका, तो आज के हमारे पास दो होमवर्क्स हैं, एक जो मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया, जो मैंने आपको पिक्चर सेंड किया मैं उसको दोबारा सेंड कर दूंगी क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ स्टूडेंट्स एडेड नहीं है तो वो फिर पिक्चर उनको नहीं जाएगी, तो उसको भी आपने करना है, औजान के हिसाब से लिखना है। और एक ये आपका कमरी और शमसी हरूफ का जो आपका होमवर्क है, ये दो हो गए। और होमवर्क के हवाले से एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो होमवर्क्स हैं इनके मार्किंग होगी, यानी आपको वीकली जो होमवर्क्स मिलेंगे उन सब की मार्किंग होगी और मार्क्स इस तरीके के साथ होंगे कि यानी आपने अगर कोई मिस्टेक कर दी है होमवर्क में तो उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बल्कि नेगेटिव मार्किंग इस सूरत से होगी कि जो स्टूडेंट होमवर्क नहीं सबमिट कर रहा क्लास के होने से पहले, जो हमारी मंडे को क्लास हो रही है तो आपने क्लास के टाइम से पहले अपना होमवर्क सबमिट कराना है। अगर जो स्टूडेंट नहीं सबमिट करा रहा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इंशाल्लाह इससे मुझे आइडिया होगा कि आप लोगों को कितनी समझ आई है और जो चीज होमवर्क में फिर गलती के तौर पर आएगी वो फिर मैं कॉमेंट्स में भी बता दूंगी और इंशाल्लाह क्लास में भी उसको रिपीट कर देंगे। तो ये चीज आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी कि जो चीज एम्बिग्विटी है उसमें उसको हम दोबारा से देख सकें, क्लियर कर सकें और एक अच्छे तरीके के साथ हम आगे चल सकें। तो होमवर्क्स के मार्क्स होंगे लेकिन गलती के ऊपर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, होमवर्क सबमिट ना करवाने पे नेगेटिव मार्किंग होगी। होमवर्क्स राइट, चले मैं जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें ये दोनों होमवर्क्स आपको लिख के सेंड कर दूंगी। वैसे ये चार कैटेगरी मैंने अभी लिखी है, अलिफ से लेके खा तक, दाल से सौ तक और दौत से का और खाफ से या तक। ये चार कैटेगरीज में से आप कोई भी एक कैटेगरी चूज कर ले और उनसे स्टार्ट होने वाले अल्फाज को आप कुरान मजीद से सर्च आउट करके लिखेंगे। और पहला जो होमवर्क है वो मैं डिफाइन किया है क्लास के स्टार्ट में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मुहर्रम बिल लाम ही के हवाले से। ओके, मेरा ख्याल है इतना बहुत है आज की क्लास के लिए। ठीक है, कोई सवाल हो किसी का? होमवर्क्स में इंशाल्लाह आपको ग्रुप में बता दूंगी। प्लीज रिपीट, मुझे समझ नहीं आई जो इंशाल्लाह से क्या है। दोनों होमवर्क्स को मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे मैं मैसेज करके आपको फिर से लिख के बता दूंगी। ओके तो फिर अब अगर कोई सवाल करना चाहे जो चीज समझ ना आई हो उस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास को एंड अप करते हैं। अभी हमारा ये मौरब नाम के हवाले से कुछ पॉइंट्स और है जो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته